सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे हरित बॉन्ड इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले जो एक मुझे इम्पॉर्टेंट खबर मालूम पड़ रही है उसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। खबर यह है कि आज इस पर एडिटोरियल कमेंट भी है दैनिक भास्कर का, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, हिंदी में है, उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ हिंदू में भी एक एडिटोरियल कमेंट छपा है, उसे भी आप अगर यदि पढ़ सकें तो आप देख लीजिएगा। इसी आधार पर मुझे यह जो खबर है थोड़ी सी महत्वपूर्ण मालूम पड़ी। सीधे सीधे ये खबर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस खबर से जो तथ्य सामने आ रहे हैं वे महत्वपूर्ण हैं। तो खबर क्या है? खबर यह है कि संविधान दिवस पर हमारे राष्ट्रपति जी ने यह कहा था कि ओडिशा और झारखंड में बहुत से जो गरीब कैदी हैं विचाराधीन हैं और जेल में बंद हैं। संख्या जानना चाहेंगे आप? लगभग 371,000, सोच के देखिए। और जितने भी हमारे कैदी जेल में बंद हैं उनका यह 77% है, ऑलमोस्ट 3/4। कल्पना करके देखिए, दुनिया का जो आंकड़ा है वो लगभग 33% के आसपास है। तो जिन हम विचाराधीन कैदियों की बात कर रहे हैं वो किस तरीके के कैदी हैं? ये बेचारे गरीब कैदी हैं, किसी अपराध के मामले में जेल में बंद हुए, मामले की सुनवाई हो गई, सुनवाई होने के बाद बकायदे इन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इनकी जमानत ले कौन? कौन इनकी जमानत लेगा? इनके रिश्तेदार इतने धनी नहीं है कि वो जमानत की राशि जमा कर सके या कुछ बॉन्ड भर सके, ये खुद में तो वो हैसियत रखते ही नहीं है। और नतीजा यह है कि ये बाध्य हैं बकायदे जेल में बंद रहने के। अब सोच करके देखिए कि जब ये जेल में बंद, याद रखिए कि इन्हें अपराधी नहीं ठहराया गया है, अभी तो इन्हें केवल जमानत पर रिहा किया गया है, लेकिन रिहा हो नहीं पाए हैं अपनी गरीबी के कारण। अब दो बातें यहां महत्वपूर्ण है हमारी जो सोचने की है, जो मैंने कहा ना कि तथ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात कि क्या एक लोक कल्याणकारी राज्य में गरीबों को इस तरीके से जेल में बंद रखना जायज है? न्यायपूर्ण की बात मैं नहीं कह रहा हूं, जायज है। लोक कल्याणकारी राज्य, अंडरलाइन करिए, लोक कल्याणकारी राज्य, इसका मतलब यह हुआ कि राज्य को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये जेल से बाहर आ सके। हमारे यहां बकायदे विधिक प्राधिकरण है, दूसरी चीज रखी गई है, वो तो अपना काम कर रही, लेकिन जहां धन का सवाल है तो वो कैसे उसकी पूर्ति हो? तो इसके लिए इस बार के बजट में अलग से प्रावधान किया गया है, धन रखा गया है, वो जो धन है राज्यों को प्रोवाइड किया जाएगा और राज्यों से कहा जाएगा कि आप इस तरह के जो कैदी हैं उन पर विचार कीजिए और उनकी जमानत राशि जमा कीजिए, जो भी व्यवस्था है उन्हें बाहर लाने के लिए कोशिश कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, कल्पना करके देखिए कि ये जो गरीब लोग जो जेल में बंद हैं इनके परिवार के बारे में सोचिए। एक ही दो कमाने वाले लोग होते हैं, श्रम पर आधारित इनका पूरा का पूरा जीवन होता है, तो उनके श्रम को तो हमने जेल में बंद कर दिया। अब वहां जेल में जो कुछ भी थोड़ा बहुत श्रम कर रहे हैं, उनके परिवार की क्या हालत होती होगी? उनके परिवार का भरण पोषण किस तरीके का होता होगा, किस तरीके से होता होगा, वो क्या करते होंगे, ये इसका दूसरा पक्ष है। मतलब इनके जो परिवार हैं उन परिवारों को हम कहां धकेल रहे हैं, गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे, या कह लीजिए कि उनमें प्रतिशोध की भावना भर रहे हैं, या उनमें उन्हें अपराध करने की तरफ धकेल रहे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है और दूसरा कहीं ना कहीं ये सामाजिक प्रश्न भी है। और ऐसा केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास जमानत भरने की राशि नहीं है। तो दोस्तों, इस दृष्टि से आप जो दो एडिटोरियल कमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब आता हूं मैं आज के मुख्य विषय पर, हरित बॉन्ड। इसकी चर्चा आपको ज्यादा अखबारों में आज पढ़ने को नहीं मिलेगी, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड जो हिंदी का है उसने बकायदे इस पर लिखा है और बहुत विस्तार के साथ लिखा है। और लिखने का कारण यह है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने कल ही बकायदे, जो हमारे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं जो हरित बॉन्ड स्वीकार करती हैं उनके लिए एक मसौदा जारी कर दिया है, या यूं कह लीजिए कि गाइडलाइन जारी किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये मामला है और कहीं ना कहीं वित्त से भी जुड़ा हुआ मामला है। सीधे सीधे हम अर्थशास्त्र से तो इसे नहीं जोड़ सकते, लेकिन आप जोड़ भी सकते हैं क्योंकि बॉन्ड शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनफैक्ट बॉन्ड क्या होते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं फ्रेंड्स, मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस बीच में मेरे पास कई मेल आए कि सर ये जो बॉन्ड होते हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसके बारे में आप बताएं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि बॉन्ड समझ में ना आने वाली जैसी कोई चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आइए चूंकि मौका है हरित बॉन्ड के बारे में बात करने का तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बॉन्ड का मतलब क्या होता है, BOND, आपने शब्द सुना है बॉन्डिंग, यार तुम्हारी उसके साथ क्या बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का मतलब है संपर्क, बॉन्डिंग का मतलब है कहीं ना कहीं मित्रता, बंधुत्व, बॉन्डिंग, एक दूसरे से जुड़ाव, बॉन्डिंग, ये तो आप जानते हैं। लेकिन यहां जिस हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं वह बेसिकली ऋण पत्र है, ऋण पत्र हिंदी में आप कह सकते हैं, ऋण पत्र। तो यहां भी कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है। देखिए कैसे जुड़ाव है, शायद इसी के आधार पर बॉन्ड इसे नाम दिया गया होगा। जुड़ाव यह है कि आप सरकार से बॉन्ड खरीदते हैं, ऋण पत्र खरीदते हैं, या कि ना प्रमाण पत्र जैसा खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार 10,000 रुपए के बॉन्ड बेच रही है, या कोई कंपनी बेच रही है, कंपनियां भी प्राइवेट कंपनी है वो भी अपने बॉन्ड बेचते हैं, और वो ये कहती है कि भाई आप ये 10,000 रुपए आप हमें दे दीजिए, हम आपको ये बॉन्ड दे देंगे और 6 साल 7 साल में हम आपको 10,000 रुपए के बदले में 20,000 रुपए लौटा देंगे। तो आपने 10,000 रुपए जमा कर दिए, 7 साल के बाद आप उस बॉन्ड को उनके पास ले गए और इसके बाद 20,000 रुपए आपने ले लिए, वापस ले लिए। तो देखिए एक बॉन्ड हो गया ना, दोनों के बीच में एक संबंध बन गया। तो ये जो आपने ऋण पत्र खरीदा यही है बॉन्ड। बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, आ गया समझ में दोस्तों। अब ये जो बॉन्ड है ये हरित बॉन्ड क्या है आप देखिए। तो बॉन्ड अलग अलग पर्पज से भी लिए जाते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले जिस संदर्भ में मेरे पास ये प्रश्न आया था कि सर बॉन्ड क्या होता है बताइए, हमें वो आर्टिकल समझ में नहीं आया, वह खास कर अभी जो म्युनिसिपल बॉन्ड की चर्चा हुई थी उस संदर्भ में था। जो हमारे नगर निगम है, म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको भी अब बॉन्ड जारी करने के अधिकार दिए गए हैं कि भाई आप बॉन्ड जारी कीजिए, लोगों से पैसा लीजिए, म्युनिसिपैलिटी बकायदे उस पर ब्याज देगी। तो आप इस पैसे का जो इस्तेमाल करेंगे वो शहर के विकास के लिए करेंगे। देखिए जो कंपनी है वो अपने ढंग से अपनी कंपनी के काम में लेगी, सरकार अपने ढंग से काम में लेगी, लेकिन जो एक पर्पजफुल बॉन्ड होते हैं उनका इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए वो लिया गया है। म्युनिसिपैलिटी लेगी तो आप म्युनिसिपैलिटी ये नहीं कि उस लिए गए पैसे को शेयर मार्केट में लगा देगी, ऐसा नहीं करेगी, वो शहर के विकास के लिए लेगी। तो वो हो गया म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड, और हम अभी बात कर रहे हैं हरित बॉन्ड। हरित का मतलब क्या है, देखिए हरित शब्द अब ये बहुत पॉपुलर शब्द हो गया है, ग्रीन, इसका संबंध सीधे सीधे पर्यावरण से हो गया है ना, पर्यावरण जो हरे रंग का होता है, हरित बॉन्ड यानी कि पर्यावरण के संरक्षण, उसके विकास, उसके पोषण से जुड़े हुए बॉन्ड, खत्म हो गया। ऑनलाइन लेक्चर में मैंने इसकी चर्चा की है, काफी विस्तार से इसकी बात हम लोगों ने की है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी बैंक, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी अगर हरित बॉन्ड बेचती है, देती है, तो ये जो पैसा वो लेगी, पब्लिक से पैसा लेगी, या कह लीजिए कि कंपनीज भी उसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं क्योंकि आपको ब्याज मिलता है ना, मैंने कहा कि 7 साल में दुगना, तो एक इन्वेस्टमेंट का तरीका भी होता है, ये माध्यम होता है, इन्वेस्टमेंट का एक रूप होता है। तो आप इस पैसे का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में कर सकेंगे, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए बस यही जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरित बॉन्ड के लिए जो आपने पैसे जुटाए हैं आप उसका इस्तेमाल कहां कहां किस किस रूप में करेंगे। इसके लिए रिजर्व बैंक ने बकायदे 9 क्षेत्र निर्धारित किए हैं कि आप इन पैसों को इन 9 क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, खर्च कर सकते हैं। ये 9 क्षेत्र क्या हैं, कौन कौन से हैं, इन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में जाकर के आपसे बातें कर सकूं, लेकिन फिर भी जितना भी वक्त होगा हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये जो 9 क्षेत्र हैं इन्हें आपको, इनके केंद्र में जो लेकर के आपको देखना है वो केवल पर्यावरण को लेकर के देखना है। देखिए मैं जल की बात करूंगा तो जल भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, मैं अगर वायु प्रदूषण की बात करूंगा तो वायु प्रदूषण भी कहीं ना कहीं सीधे सीधे पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। तो जब हम पर्यावरण या हरित की बात कर रहे हैं तो आप मत समझिए कि इसका संबंध केवल जंगलों से है, पेड़ों से है, क्योंकि उनका रंग हरा होता है, नॉट एट ऑल, इसका जो संबंध है वह पर्यावरण से है। तो 9 क्षेत्र पर्यावरण के ऐसे चुने गए हैं जिनमें हरित बॉन्ड की जमा राशि खर्च की जा सकती है। अब मैं धीरे धीरे आपको ये क्षेत्र बता रहा हूं, इत्मीनान के साथ मैं बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, राइट। और इस पर आपको चाहिए कि एक छोटा सा नोट भी तैयार कर लें। अक्षय ऊर्जा, जिसे आप ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं, अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कुशलता। अब कहेंगे ऊर्जा कुशलता का क्या मतलब है? हाँ, मान लीजिए कि मैं अभी 100 वाट से 10 रुपए उत्पादन कर रहा हूं, तो अगर इसकी कुशलता बढ़ा दी जाए तो मैं 100 वाट से 15 रुपए का उत्पादन कर लूंगा, तो ऊर्जा की जरूरत कम महसूस होगी। और अगर ऊर्जा की जरूरत कम महसूस होगी तो सीधी सी बात है कि प्रदूषण कम होगा। तो आप ऐसे मशीन अगर तैयार कर रहे हैं, कुछ और ऐसे सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिससे कि ऊर्जा की कैपेसिटी बढ़ जाती हो, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल में आपकी 10 किलोमीटर कार चल रही है और उसी 1 लीटर पेट्रोल में अब पता लगा कि आप 12 किलोमीटर कार चला रहे हैं केवल टेक्नोलॉजी डेवलप करके, तो ये तो ऊर्जा कुशलता हो गई ना। तो इसमें भी आप इस पैसे को लगा सकते हैं, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कुशलता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन स्वीकार्यता, सतत जल, कचरा प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, हरित इमारतें, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और जमीन का इस्तेमाल, और है स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण। इन सब में हरित बॉन्ड के धन का निवेश किया जा सकेगा। दोस्तों, मैं एक सलाह यहां देना चाहूंगा, वक्त की कमी के कारण मैं इनके डिटेल्स में नहीं जा पा रहा हूं, आपको चाहिए कि आप इन पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए जरूर विचार करें, तो इससे पर्यावरण से संबंधित एक टॉपिक भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अमित यादव, वेदानंद नई दिल्ली से, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से, और अभिषेक अनारी मुजफ्फरपुर बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की अब इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।